Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna. विषय है कि भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, भाग्य से भगवत कथा मिलती है। बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है तो भगवत कथा, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड हियर कृष्ण कथा। बहुत सुंदर दर्शन परम झांकी श्री नाथ जी, गोवर्धन नाथ कहते हैं नाथ जी, पूरा नाम कहते हैं गोवर्धन नाथ। गोवर्धन, गो मतलब गाय, वर्धन मतलब जो उनकी पालन पोषण में सहयोग करता हो, नाथ मतलब मालिक। ये भगवान श्री कृष्ण की 7 वर्ष की छवि है, जब भगवान 7 वर्ष की आयु के थे। और गोवर्धन पर्वत को अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली के ऊपर धारण किया था, ये स्वरूप भगवान का है जो यहां अपने को दर्शन हो रहा है। ये ठाकुर जी का ये श्री विग्रह, श्री विग्रह कहते हैं, ठाकुर जी को मूर्ति नहीं कहते, श्री विग्रह, ये भगवान का दिव्य विग्रह, वज्रनाभ, भगवान श्री कृष्ण के परपोत, भगवान श्री कृष्ण का बेटा, कृष्ण के बेटा रुक्मणी से पहला उसका नाम है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा वज्रनाभ। जब महाराज युधिष्ठिर ने ये समाचार सुना अर्जुन से कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके स्वधाम चले गए, महाराज युधिष्ठिर ने अपना राजमुकुट उतार के नीचे रखा, कहा अब ये राज हम नहीं करेंगे। राज दिया था कृष्ण ने, श्री कृष्ण नहीं रहे तो ये राज हम नहीं करेंगे। और भीम ने कहा अगर युधिष्ठिर राज नहीं करेगा तो हम भी राज नहीं करेंगे। उन्होंने भी अपना मुकुट उतार के नीचे रखा और अर्जुन तो पहले ही मुकुट नीचे रख चुका था, नकुल सहदेव ने भी मुकुट को नीचे रख दिया, बोला युधिष्ठिर नहीं राज करेगा तो हम भी राज नहीं करेंगे। पूरा जीवन युधिष्ठिर के अनुगमन किया है, उनकी आज्ञा का पालन किया है तो अलग नहीं रहेंगे। भगवान भगवत गीता में कहते समवाहम सर्वभूतेषु, मैं सभी से सबके साथ समभावना से रहता हूं। भगवान ने धर्मराज पांडवों को भी दिया था और कौरवों को भी दिया था, बराबर का दोनों को अवसर दिया था। पांडवों के संग में युधिष्ठिर धर्मराज थे और कौरवों को विदुर दिया था धर्मराज के रूप में, दोनों को फैसिलिटीज वही दी थी, दोनों के पास धर्मराज था। पांडव धर्मराज की आज्ञा का पालन करते थे और कौरव विदुर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे। भगवान की तरफ से दोनों को एक जैसा मौका दिया गया, लेकिन पांडवों ने धर्म का पालन किया तो भगवान ने उनकी रक्षा की। जो धर्म का पालन करता है भगवान उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का तिरस्कार करता है, धर्म धर्म को धक्का देकर निकाल देता है विदुर की तरह, उनका सर्वनाश हो जाता है। भगवान ने दोनों को धर्म दिया था, दोनों के पास एक ही समय में धर्म आया हुआ था, विदुर भी वही है, धर्मराज है, युधिष्ठिर भी वही धर्मराज। और ये समाचार अंदर रानियों में पहुंचा, कुंती महाराज नारायण का अर्जुन आता है बाहर से, कभी तो हमारे चरण स्पर्श करता है, आज अर्जुन अंदर क्यों नहीं आया। किसी ने कहा महाराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके स्वधाम चले गए। कुंती स्वधाम सुना चले गए नहीं सुना, प्राण त्याग दिया, इसको कहते हैं मदगत प्राणा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं मदचित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथ्यंत माम नित्यम तुष्यंती चरणती च। कैसे मेरे भक्त होते हैं मदचित, उनका चित्त मुझ में लगा हुआ होता है, अथवा उनके हृदय में मेरा चित्र सदा के लिए निवास करता है। ये जो ठाकुर जी की झांकी ऊपर देखने जाते हैं, आंखें बंद करके देखो कि हृदय में ये बैठा है कि नहीं बैठा है, ये सुंदर सब लाल से वस्त्र पहने हुए हैं, ये ऊपर वाले हाथ में छोटा सा फूल उठाया हुआ है, ये झांकी हृदय में है या नहीं है, ये हर समय अगर हृदय में फंसे तो इसको कहते हैं मत चित्त। हर समय भगवान हृदय में निवास करना चाहिए। कोई पूछेंगे हृदय में किसी के भगवान हर समय रहता है, ऐसा कोई उदाहरण है क्या? तो राम कथा में हनुमान जी ने अपना सीना ऐसे खोल के सीताराम को दिखाया था, सबने देखा होगा। हनुमान से पूछा था कि ये तो 9 लाख मोती तोड़ के क्यों फेंक रहे? बोला देख रहा हूं इसमें राम है क्या? बोला तुम्हारे अंदर राम है? बोला ये देखो सीताराम है हृदय में, इसको बोलते मस्जिद तक, चित्त में सदा भगवान निवास करता है। मदगत प्राण, अगर मैं चित्त से निकल जाऊं तो वो प्राण दे देगा। भगवान की स्मृति न रहे तो मरने के समान है जीवन, भगवान को भुला हुआ व्यक्ति मरे के समान है, चलता है फिरता है खाता पीता है लेकिन मुर्दा है। भगवान की स्मृति कैसे बनी रहे? मदगत प्राणा, कृष्ण नहीं रहे तो कुंती को जीवन का कोई रहने की इच्छा नहीं थी, महारानी थी, पूरे विश्व की अकेली महारानी थी कुंती महारानी, राजमाता थी। उन दोनों के बीच में एक तरफ राजपाट युधिष्ठिर ने छोड़ा, महारानी कुंती ने प्रस्थान किया भगवत धाम का और परीक्षित को राज देते समय कहा, युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित तुम हमारे उत्तराधिकारी हो, अब ये राजपाट आपको संभालना है, लेकिन मथुरा मंडल का राज भगवान श्री कृष्ण के परपोत वज्रनाथ को देना, पूरे विश्व पूरी दुनिया का राजा तो महाराज परीक्षित बने। परीक्षित किसको बोलते हैं? परीक्षा को सुनिए ना, बच्चों की आजकल परीक्षाएं चल रही, बोलते ना एग्जाम चल रहे, एग्जाम को बोलते हैं परीक्षा। महाराज परीक्षित का नाम वैसे था विष्णु राज, लेकिन वो बचपन में जो भी आता था उसको ऐसे देखते थे और फिर आंखें बंद करते थे, ऐसे करते थे, तो उनका नाम हो गया परीक्षक, सबकी परीक्षा ले रहा है, देख रहा है कि कौन है, किसको देखता था। मां उत्तरा के गर्भ में परीक्षित ने भगवान का साक्षात दर्शन किया था और बाहर दुनिया में परीक्षित ढूंढता था कि वो कहां है, जिसने मेरी जन्म से पहले रक्षा की थी उसको पहचानने का प्रयास करता था, इसलिए उसका नाम परीक्षित। जो भी व्यक्ति देखता था उसको देखता रहता था कि ये है कि नहीं है। एक दिन यज्ञ कराया महाराज युधिष्ठिर ने, भगवान श्री कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर आया, भगवान सभा में बैठे थे, उठाने वाली माताजी परीक्षित को राजसभा में लाई, राजसभा में परीक्षित महाराज युधिष्ठिर की गोद में गए, एक ही तो बच्चा था, वो भी पोता था, पूरे पांडु वंश में एक ही तो बच्चा था, बड़ा प्रिय था सबको। भगवान युधिष्ठिर महाराज की गोद से परीक्षित उतरा, उतर के चलते हुए सब कुर्सियों से होता हुआ जिस आसन में भगवान श्री कृष्ण था वहां जाकर खड़ा हो गया और देखता रहा। अब आंखें नहीं बंद कर रहा था। तब व्यासदेव वहां बैठे थे, उठे, श्री कृष्ण को कहा इसने आपको पहचान लिया है, बस इसको एक संदेह है, दिस वन डाउट ओनली। भगवान ऐसे मुस्कुरा के देखा व्यासदेव को, बोला जब आपने इनकी रक्षा की थी तो आप हृदय से गए थे, हृदय में आप चतुर्भुज रूप में रहते थे, तब आप चतुर्भुज रूप में थे, आपकी दो बाहें और आप दिखाइए इसको तो ये संतुष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने दो और बाहें ऐसी अपनी बना ली, अब चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का दर्शन कर गया और उसके बाद परीक्षित ने और किसी को नहीं देखा। अब भगवान श्री कृष्ण का पहचान लिया कि इसने मेरी रक्षा की, उस परीक्षित को राजा बना दिया गया पूरे विश्व का और वज्रनाथ राजा हुए वृंदावन मथुरा मंडल के। महाराज परीक्षित मिलने गए, कहा वज्रनाथ आपके पूर्वजों का भगवान श्री कृष्ण का बहुत अनुग्रह रहा हमारे कुल के ऊपर, हमारे पिता भगत अर्जुन के तो साथी बने थे, हमारे सारे कुल की रक्षा की भगवान ने, आंखों की जैसे पलकें रक्षा करती हैं। अब तुम निश्चिंत हो, तेरे राज का सारा दायित्व तो हमारे ऊपर है, तुम्हें कुछ सेना रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी रक्षा का प्रभार हमारे ऊपर है, तुम्हारे कोष और धन और ट्रेजरी की जरूरत नहीं है, सारा हस्तनापुर आपकी सेवा के लिए सदा रहेगा, बस आप यहां एक ही काम करो। भगवान श्री कृष्ण के लीला के जो स्थान है उनके नामकरण करके वहां गांव बसाओ। परीक्षित को देखते हुए कहता है वज्रनाथ के महाराज, आप के अनुकूल ही आप कह रहे हैं, आप पांडुवंशी हैं, आपका धर्म है, आप ठीक कह रहे हैं, वैसे हम भी क्षत्रिय हैं, अपनी रक्षा करने में हमें भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे पिता हैं अनिरुद्ध और प्रद्युम्न ने बहुत शिक्षा दी है, लेकिन हमारी समस्या यह है कि इस उजड़ वन में बैठे हैं, ये तो मथुरा जंगल है, इसमें कैसे हम रहे, कैसे बसाएं। तब सांडिल्य मुनि को बुलाया गया, ऋषि सांडिल्य वहां पधारे। सांडिल्य ऋषि ने कहा कि यह मंदिरों का निर्माण करो, और परीक्षित महाराज ने हस्तनापुर से बहुत धनी सेठों को वहां भेजा कि जाके आप रहो मथुरा, मथुरा में बड़े मंदिरों के निर्माण का काम शुरू हो गया, काम करने के लिए बहुत से काम करने वाले आ गए। तब उन मंदिरों में वज्रनाथ ने भगवान श्री कृष्ण के विग्रह स्थापित किए, गोविंद देव जी का विग्रह स्थापित किया जो अभी जयपुर में है, हर देव का विग्रह स्थापित किया जो इस वक्त जन्मभूमि मथुरा में है, केशव देव अच्छा केशव देव का विग्रह इस वक्त कानपुर में है, और ये श्रीनाथ जी जब उन जमाने में गोपाल जी कहते थे, ये विग्रह वज्रनाथ ने स्थापित किया। बहुत समय तक तो ये बहुत बड़े भव्य मंदिर रहे वृंदावन में, लेकिन मुगलों के समय में ये सब आते आते ये मंदिर सब जमीन में खत्म हो गए, देखने में नहीं आने लगे, और ये ठाकुर जी की मूर्ति, ये श्री विग्रह वज्रनाथ जी के द्वारा स्थापित किया हुआ गोवर्धन के झाड़ियों के बीच में कहीं छुपा के रख के गए थे पुजारी पुराने जमाने में। एक दिन एक बहुत बड़े महात्मा भ्रमण करते हुए गोवर्धन से, एक स्थान है गोविंद कुंड, गोविंद कुंड वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की, और इंद्र थक हार के भगवान की प्रार्थना करने के लिए सुरभि गाय को लेकर एरावत हाथी को साथ लेकर आया था, इस जगह पे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। ये कुंड बना था, गोविंद कुंड के ऊपर ये महात्मा आके बैठे, महात्मा भगवान श्री कृष्ण के नाम स्मरण में, भगवान की लीला के चिंतन में 3 दिन तक एक जगह बैठे रहे। चौथे दिन एक छोटा सा बालक 5-7 साल का, हाथ में लकुटी ली, एक लोटा दूध का लिया, आया बाबा आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, हमारे घर में गाय ने दूध दिया, मैया ने भेजा है, ये दूध आप पी लीजिए। बाबा आंखें खोली, बालक को देखा, कहा आपको कैसे मालूम कि हमने कुछ नहीं खाया। बोला यहां माताएं आती हैं पानी भरने के लिए कुंड पे, वो कहती है 3 दिन से आप यहां बैठे, आप उठ के कहीं भिक्षा लेने गए नहीं और आपने कुछ खाया नहीं है, और इसलिए ये दूध पी लीजिए। वो महात्मा जति था, जति कहते हैं सन्यासी साधु को जो संसार में जतनशील होता है, कहीं भी अपने आप को गिरने से बचा के रखता है, उसको जति बोलते हैं, जति मतलब जतनशील। बड़ा सुंदर बालक का झांकी का दर्शन कर रहे थे, बालक ने कहा मैं आता हूं बाबा, अभी आपसे लेके जाऊंगा मेरा बर्तन, आप थोड़ी देर के लिए वो प्रसाद पा लीजिए, मैं आता हूं तो लोटा लेके जाऊंगा। बच्चा चला गया, इस महाराज जति ने दूध पिया, ऐसा दूध उसने कभी जीवन में पिया नहीं था, ये तो कोई अलौकिक दिव्य दूध का, जिस पीने से एक अलौकिक समाधि के आनंद में महाराज बैठे हुए देखते वही बालक सामने खड़ा है, कह रहा है बाबा बाबा मैं झाड़ी में पड़ा हूं, बहुत गर्मी लग रही है, मेरे ऊपर मिट्टी चढ़ गई है, मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां से निकालो। भगवान ऐसे आंखें खोलता है महाराज, उठ के जाता है गांव में, कहता है अरे भाइयों आप आइए मेरी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, कुछ कुल्हाड़ी लाइए, कुछ फावड़े लाइए, यहां बालक ने हमको निर्देश दिया है कि वो यहां है, इसको निकालना है। जंगल को काटा कुल्हाड़ी से, फावड़े से रास्ता साफ किया, पत्थर हटाए, और तब श्री विग्रह गोवर्धनाथ गोपाल जी का वहां से प्रकट हुआ। उस विग्रह को उसी वक्त पूरे गांव के लोग एकदम गोविंद कुंड से जल लाए, हजारों मठ के जल के लाकर उसको अभिषेक किया, गोवर्धन के ऊपर अभिषेक किया, उनके सामने सबने अन्न ला के बहुत बड़ा अन्नकूट के भोग का प्रबंध किया, और फिर कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर बहुत सुंदर मंदिर भगवान गोवर्धन नाथ का बनाया गोवर्धन के ऊपर। और फिर जहां ये महात्मा थोड़ा समय रहे उन ब्रजवासियों को पूजा दे दी, और महाराज जहां रहे उस जगह का नाम हो गया जतिपुरा। जतिपुरा का मतलब जहां जति लोग रहते हैं, ये महात्मा वहां रहे थे, नाम था उसका माधवेंद्रपुरी। एक दिन यही श्रीनाथ जी, यही गोवर्धन नाथ बाबा को सोए हुए उठाता है, उठो बाबा बहुत गर्मी लग रही है, चंदन लाओ मलाया का, मेरे शरीर पे चंदन का लेप करो। दो बार श्री कृष्ण साक्षात इस महात्मा के स्वप्न में आके आदेश दिया। यहां से महात्मा निकले हैं प्यादल, एक और स्थान पे जाते हैं ओडिशा में, वहां एक ऐसा ही, ये ठाकुर जी की जो श्रीनाथ जी का श्री विग्रह है ना, एक बहुत सेना के ऊपर अंकित है, दूसरी मूर्ति जैसे बनती है वैसा बना हुआ नहीं है, पीछे शिला है पूरी, उसके अंदर कार्विंग किया हुआ। ऐसा एक और सुंदर गोपीनाथ का विग्रह है ओडिशा में, उस विग्रह के लिए कहते हैं भगवान श्री राम जब दंडक आने से गुजर रहे थे, सीता जी साथ थी, तो एक जगह बैठ के अपने तीर की नोक से पत्थर के ऊपर एक चित्र निकाला, पूछा ये क्या है, बोला ये मैं आने वाला दूसरा अवतार का मेरा रूप है, भगवान श्री राम के द्वारा ये अंकित गोपीनाथ जी स्थापित है रेमुणा में, जिसकी दिव्य कथा स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से बताई भक्तों को, कि ये महात्मा माधवेंद्रपुरी जब वहां पहुंचा तो गोपीनाथ का दर्शन करके बड़ा आनंदित हुआ। तब तो वहां के पुजारी भोग लगाने के लिए खीर ले जा रहे थे कंटेनर्स में, माधवेंद्रपुरी के मन में आया अगर मालूम हो कि ये खीर कैसी सुंदर स्वादिष्ट है तो मैं मेरे गोपाल को नाथ जी को ये भोग लगाऊंगा। लेकिन फिर आया भगवान को भोग लगाने से पहले मैंने ऐसे कैसे विचार कर लिया, तो अपराध हो जाएगा। वहां से चले गए अपने धर्मशाला में, जा रुके थे वहां सो गए। रात का ठाकुर जी का शयन करा के पुजारी सोया, ठाकुर जी ने उठाया, उठो उठो पुजारी, पुजारी उठा, बोला एक खीर का मिट्टी का बर्तन मैंने छुपा के रखा है मेरे ओतरी के अंगूचे के पीछे। अंदर जाके पुजारी देखता है, बोला मैं तो सब खीर उठा के लाया था अंदर से, नहीं एक खीर का बर्तन पड़ा है। वो जाके देखता है तो भगवान के अंगोचे के नीचे, गमछे के नीचे खीर का एक बर्तन पड़ा है। भगवान कहता है ये जाके माधवेंद्रपुरी को देख के आओ। अब खीर का बर्तन उठाया, पुजारी पूछता है माधवेंद्रपुरी कहां है, माधवेंद्रपुरी कहां है, माधवेंद्रपुरी कहां है, रात को आधी रात को आवाज लगा रहा है। अब ये साधु सोते नहीं है, ये तो भगवान के भजन में जागते रहते हैं, जब लोग रात को सोते हैं तो साधु भगवान का भजन करते हैं। माधवेंद्रपुरी बाहर निकले, क्यों भाई मेरा नाम पुकार रहे हो, क्या बात। पुजारी तो माधवेंद्रपुरी के चरणों में गिर पड़ा, बोला आप भाग्यशाली ने भगवान ने आपके लिए चोरी करके खीर रख दी थी। उस दिन के बाद उस गोपीनाथ का नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। अभी उस गोपीनाथ को खीर चोर गोपीनाथ कहते हैं, आप कभी भी जाकर उसका दर्शन कर सकते हैं। माधवेंद्र पुरी रात रात को वहां से निकल गए, बोला सुबह सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे यहां और कहेंगे माधवेंद्र पुरी के लिए भगवान ने खीर चोरी की, तो बहुत महिमा होगी और महिमा संत के लिए बहुत घातक होती है। प्रतिष्ठा सूकर विष्ठा प्रतिष्ठान सरस्वती महाराज कहते हैं, मान सम्मान के लिए जो लालायत रहता है उसकी भक्ति एकदम रुक जाती है। माधवेंद्र पुरी रात रात को वहां से निकल के जगन्नाथपुरी गए, लेकिन माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुंचे तो ये समाचार उससे पहले पुरी पहुंच गया था कि ये माधवेंद्रपुरी महाराज के लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी किया। तब महाराज जगन्नाथपुरी के महाराज ने कहा कि आप बड़े बहुत बड़े महात्मा हैं, आप संत हैं, भगवान ने आपके लिए खीर चोरी किया। तब माधवेंद्रपुरी कहता है, जी हां, गोपाल जी ने मेरे को भेजा है और मेरे को एक सेवा उनकी करनी है, चंदन चाहिए। अब राजा ने कहा चंदन की व्यवस्था मैं करता हूं। चंदन और कपूर राजा ने दिया और सैनिक दिए रक्षा के लिए कि रास्ते में चोर कहीं चुराने जाए। वापस लौटते हुए इसी रेमुणा में जब पहुंचे माधवेंद्रपुरी तो रात को फिर गोपीनाथ फिर गोपाल जी स्वप्न में आए, बोला मैं वही गोपाल जिसके लिए तुम चंदन ले जा रहे हो, इसी गोपीनाथ को लगा दो, मैं इसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। ऐसा सुबह उठ के वो चंदन घिस के उसी गोपीनाथ को लग दिया। अब भगवान का श्री विग्रह में कोई अंतर तो है नहीं, भगवान तो एक ही है, जो जहां भी स्थापित है भगवान तो एक ही है। लेकिन ये भगवान ने ऐसा आदेश क्यों दिया? बहुत मुश्किल समय था, इतना भार उठा के वृंदावन तक आने में, कोई चोर लुटेरे कई जगह पे टैक्स होते थे, वो समय बहुत कठिन था। उस समय में शासक जो थे वो साधु महात्माओं को ऐसे रास्ते से सामान ले जाना नहीं देते थे, टैक्स होता था। तो भगवान ने एक बार फिर श्रीपाद महाप्रभु वल्लभ आचार्य जी के पुत्र विठल आचार्य जी उनको ये श्री ठाकुर जी श्री गोपाल जी श्री नाथ जी के नाम से श्री उसका श्री गोवर्धन नाथ जी कहते हैं, ये विठल आचार्य को उनकी पूजा सेवा प्राप्त हुई। और एक समय के अंदर सब ठाकुर जी वृंदावन के मुगल के काल में वहां से राजस्थान ले जाए गए। तब विठल नाथ जी महाराज इस ठाकुर श्री गोपाल जी जो अब नाथ जी के नाम से प्रतिष्ठित हो गए, गोवर्धन नाथ के नाम से, वहां से बैलगाड़ी में राजस्थान से रास्ते से लेकर इस वक्त वो ठाकुर जी साक्षात जो गोवर्धन में विराजमान थे वो श्री नाथ द्वारे में विराजमान थे। आज भी लाखों लोग उसका दर्शन करने जाते हैं। तो ये ठाकुर आज भी ये मान्यता है कि रोज नाथ द्वारे से बैलगाड़ी में गोवर्धन रात को आते हैं और सुबह सवेरे वापस वहां अपने गोस्वामी की पूजा स्वीकार करते हैं। तो ये ठाकुर जी कोई मूर्ति नहीं, ये साक्षात भगवान है, लेकिन इसको देखने के लिए आंखें होनी चाहिए। प्रेमंजन श्रित भक्ति विलोचने न संत सदैव देश अवलोकयन्ति यमशाम सुंदरम अचिंतम गुण स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तमम नमः। जिसके आंखों में प्रेम है उसको भगवान दिखता है, दिखता नहीं है भगवान उनसे बात करता है, बात नहीं करता है भगवान उनकी सारी इच्छा पूरी करता है। लेकिन देखने के लिए प्रेम आंखों में होना चाहिए। भगवान का दर्शन करने जाते हैं आंखें खोल के चरण से लेकर भगवान के मुकुट तक बहुत सावधानी से एक एक अंग के ऊपर ध्यान को जमाना चाहिए। देखा क्या गया है प्राय मंदिर में जब लोग जाते हैं भगवान के सामने खड़े होते हैं तब आंखें बंद कर देते हैं, जहां आंखें खोल के भगवान को देखना चाहिए वहां आंखें बंद करते हैं। और जब आंखें खोलेंगे तो बाद सामने कौन खड़ा है, पास में कौन खड़ा है, उसके कपड़ों को देखते रहेंगे, इसकी साड़ी कैसी है, इसका कपड़ा कैसा, अरे भगवान के कपड़े देखने हैं, भगवान का वस्त्र देखना है, और किसी को अंदर में दिखने में नहीं आना चाहिए। दृष्टि केवल भगवान के ऊपर ऐसी केंद्रित होनी चाहिए कि बाहर निकलने के बाद आंखें बंद कर दो तो वो छवि आपके हृदय में, वो झांकी आपके हृदय में आपको दिखे। और तीन बार आरती, आरती का पूछे आरती का अर्थ क्या, हम आरती में सब जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, अच्छा अर्थ क्या है। उस वक्त दीप जलाते हैं भगवान के बिल्कुल निकट ले जाते हैं मुख के, ताकि भगवान का सुंदर मुख का दर्शन हो सके। तो लाइटें अभी हो गई हैं, लेकिन अभी भी दक्षिण भारत में भगवान के दर्शन के समय भगवान के सामने दीप ले जाते हैं, आरती का तब दर्शन दिखता है भगवान का। और दर्शन दिखता है तो उसमें हमारी रति होनी चाहिए। रति का मतलब उसको इतनी हमारी आसक्ति और प्रेम उसको देखने में होना चाहिए कि पलक झपकना हम भूल जाए। तो आरती के समय भगवान में रति पैदा करनी चाहिए। रति का मतलब प्रेम, रति प्रेम को कहते हैं। और प्रेम तब होता है जब उनका दर्शन होता है, और उनका दर्शन तब होता है जब उनके सामने प्रकाश होता है, तब भगवान का दर्शन दिखता है। तो आरती के समय जो 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 भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, बड़ी सावधानी से भगवान के चरणों से लेकर और एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। इसको बोलते हैं जागते समाधि, ये समाधि है। समाधि का मतलब सब दुनिया भूल जाती है, केवल वो भगवान की छवि हमारे आंखों के द्वारा हमारे हृदय में विराजमान होती है। और फिर दोपहर के सुबह मंगला का दर्शन करके गए, फिर राजभोग की आरती के दर्शन पे आए तो मध्यान्ह काल का दर्शन हो गया, सायं की आरती का दर्शन किया, ये संध्या आरती का दर्शन किया, तो 24 घंटे भगवान हृदय में विराजमान रहता है। बहुत से लोग इसीलिए दर्शन करने भगवान के आते हैं कि आंखों के द्वारा हृदय में भगवान को स्थापित कर ले, नहीं तो बहुत सी और चीजें हमारे हृदय में पहले से बसी हुई है। आंखें बंद करके देखो हृदय में कितनी और शक्लें आपको दिखाई देती हैं। और कथा सुनना इसलिए जरूरी है भगवान की कि ये कथा हृदय को द्रवित करेगी। भगवान की करुणा, भगवान की दया भक्तों के ऊपर जब ये कथा सुनेंगे कि कैसे एक महात्मा के सामने साक्षात भगवान दूध का लोटा लेके उसको प्रसाद देने के लिए स्वयं भगवान चले गए अपने हाथों से, तो दिल अंदर पिघलेगा। जब दिल अंदर पिघलेगा तो पुरानी बनी बनाई मूर्तियां हैं जो बच्चों की, बेटे की, धन की, ये वो सब पिघल जाएंगी। और जब ये पिघल जाएंगी तो हृदय के अंदर भगवान गोपाल की मूर्ति का शक्ल बनेगा। ये सोना है तो बहुत बड़ी, हम गोल्ड से मतलब सोने का काम करते हैं, पिघाल के सोने को जो भी चाहे उसकी मूर्ति बनाई जा सकती है। तो हृदय के अंदर इस वक्त बहुत मूर्तियां पड़ी हैं, ऐसी मूर्तियां पड़ी हैं, वो मूर्तियां अगर रहेंगी तो मरने के समय हम वहीं चले जाएंगे जो मूर्ति उस वक्त हमारे हृदय में बसी हुई है। अंतकाले च मामेव स्मरं मत्वा कलेवरम, ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं उस समय जिसकी मूर्ति हृदय में होगी वही तुम चले जाओगे। तो जिसने भगवान की मूर्ति हृदय में जमा ली है उस वक्त मृत्यु के समय कौन लेने आता है। मृत्यु के समय जब यमदूत लेने आता है तो किसको लेके जाता है, शरीर को ले जाता है क्या, किसी का शरीर लेके आजकल ले जाए तो हमारी जान छूट जाए, बहुत बड़ा काम करना पड़ता है मरने के बाद, चार आदमी को उठाना पड़ता है, उसके बाद अग्नि संस्कार की शरीर सूरी विसारी विधि करनी पड़ती है, शरीर को नहीं ले जाता है। मन बुद्धि अहंकार और चित्त के सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं, उसके अंदर आत्मा कैद होती है। अब जब वो लेने आए और आपके मन में और चित्त में भगवान विराजमान हो तो दूर से प्रणाम करेगा, पर इसके पास को हाथ नहीं लगा सकता, ये तो भगवान बैठा है, मालिक बैठा है हमारा अंदर। तो जो भगवान की झांकी लेने के बाद भगवान को हृदय में विराजमान कर देते वो मृत्यु के समय बेफिक्र होते हैं। जीवा गुण गोविंद गाय कर्ण सुनो हर नाम, जो जीभा से गोविंद का गुण गाता है, कान से हरि नाम को सुनता है, पड़े न जम के धाम, वो कभी जम के धाम नहीं जा सकता है क्योंकि उसके हृदय में भगवान बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है। हर समय भगवान का नाम जीभा पे होता है, हर समय भगवान का चित्र हृदय के ऊपर, अगर हृदय के हृदय के पटल के ऊपर इस आईने के ऊपर भगवान का चित्र प्रकट हो जाए, रोज देख देख के अंकित हो जाए और बाकी सारी मूर्तियां पिघल जाए, तो अंत समय साक्षात भगवान अपने पार्षद भेजते हैं कि चलो इसको लेके आओ मेरे पास, नहीं तो अजामिल का चरित्र भागवत में सबने पढ़ा है कि जम के दूत आते हैं और उनको देख के आदमी इतना डरता है कि अंत समय बहुत से आदमी के चेहरे को देखो बहुत भयभीत होते हैं और मलमूत्र त्याग देते हैं, क्योंकि भय किस चीज का लगता है, एक तो जमदूतों को देखते हैं इसलिए भय लगता है, और जमदूत जब आते हैं तो पकड़ने से पहले एक उनके पास वीडियो कैसेट VCD होती है वो साथ लाते हैं, और उस VCD कहां से लाते हैं, एक यमराज का एजेंट सबके कंधे के ऊपर बैठा है, मालूम है उसका क्या नाम है, चित्रगुप्त। उसका अर्थ क्या है, चित्र मतलब फोटो, गुप्त का मतलब सीक्रेट फोटोग्राफर, सबके कंधे के ऊपर बैठा है, जो हम करते हैं रोज उसकी रील बनती रहती है, और अंत समय जब जमदूत हम बोलते हम ऐसे नहीं थे तो एक्शन रीप्ले करता है, दिखा जाएगा देखो ये सब तुम्हारा चरित्र इसमें, और उस वक्त जब वो देखता है तो बोलता है मैंने ये किया आपने कर दिया, ये भी आपको पता है। वो हमारा सारा जब लेखा हम देखते हैं तो बहुत भयभीत होता है, इसलिए अंत समय में बहुत कठिनाई बहुत तकलीफ बहुत पीड़ा होती है, 100 से 1000 के 10000 बिच्छू काटते हैं उससे ज्यादा पीड़ा होती है अंत समय में, लेकिन भगवान के भक्त भगवान के कीर्तन के बीच में जब जाते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवान के पास जा रहे हैं। मरना तो आम आदमी को भी पड़ता है, मरता तो साधु संत भी है, लेकिन दोनों के मरने में बड़ा अंतर है। बिल्ली को देखा है चूहे के ऊपर जब बिल्ली लपकती है तो बिल्ली चूहे मैं अपने दांत गाड़े उससे पहले चूहे के प्राण निकल जाते हैं, निकलते कि नहीं निकलते, लेकिन उसी अपने मुंह में उन्हीं दांतों के अंदर बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है, बिल्ली अपने छोटे बच्चे को उसी मुख में उठा के एक घर से दूसरे घर में ले जाती है, उस बच्चे बिल्ली के बच्चे को पीड़ा होती है क्या, बिल्ली का बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है, चित्त में आनंद है मेरी मां मेरे को उठा के ले जा रही है, वो बड़ा झूले में झूले जैसा उसको लगता है, लेकिन चूहे के लिए मृत्यु है। ऐसे ही दुनिया में जो भगवान से बेमुख है, हरी कथा कभी कानों से सुनी नहीं, मुख से कभी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे, ऐसे नहीं जपा है तो चूहे की तरह जमदूतों को देखकर प्राण निकल जाते हैं और बहुत दुख और तकलीफ होती है, लेकिन जिसने जीवन में तैयारी की है माताओं आप लोग बैठी हो, लड़की का घर में जन्म होता है ना, उस दिन से मां को चिंता शुरू होती है कि इसको एक दिन विदा करना पड़ेगा, होती है कि नहीं होती, और मां कुछ छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करती रहती है, एक दिन मेरे को लड़के आया, हाँ लड़की को विदा करना पड़ेगा, 25 साल तक तैयारी करती रहती है और जब विदा करती है तब रोती है और फिर अंदर में बहुत खुश होती है कि अब अपने पति के घर जा रही है, सुखी हो जाएगी, ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता है, ऐसे इस आत्मा को भी इस संसार से विदा करना है, अच्छी समझदार मां की तरह क्या हम तैयारी कर रहे हैं क्या विदाई की, कुछ कथा कर रहे हैं, बच्ची को देना पड़ता है ना, कुछ देती है ना मां साथ में आना है, हमारे पास क्या है साथ ले जाने के लिए, कुछ तैयारी की है, अरे मेरे भाइयों आप सब यहां बैठे हो 2009 की 20 मार्च को, बाकी 15 मिनट के बाद सत्संग यहां समाप्त करेंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे 8:15 बजे 8:30 बजे इस्कॉन मंदिर में जाके यहां से वहां, तो यहां से फिर आप अपने अपने घर जाएंगे, आपको रास्ता मालूम है अपने घर का, आप कहेंगे आपको मालूम नहीं, आप पहली बार पहले ना आए, आपको मालूम है हमारे घर का रास्ता,
तब हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं,
2080 भी आएगा, 9 के बाद 80 आएगा, 71 ईयर के बाद, जरा अपने और देख लो हम में से कितने लोग होंगे इस दुनिया में। 71 ईयर के बाद ये बच्ची जो सामने बैठी है ये 80 साल की होगी। वाह, हम में से कितने लोग होंगे जरा देख गिन लो, 71 अपनी एज में ऐड कर लो, हम होंगे यहां नहीं होंगे ना, तो कहां जाएंगे उसका कुछ पता है? अभी कहां जाएंगे ये तो सबने कह दिया घर का पता है, लेकिन उस समय हम कहां जाएंगे जब यहां से जाना पड़ेगा उसका किसी को पता है? उसकी तैयारी की है, यहां से सुबह घर से काम पे जाते हो तो भी टिफिन साथ ले जाते हो, दोपहर का भोजन खाना है, इतनी तैयारी करते हैं कि नहीं करते सुबह से? और यहां से अपने घर जाना पड़ता है छुट्टियों में तो दो बड़ी बड़ी बैग बनाते हैं सामान की ले जाने का पर्याप्त तैयारी करते हैं, लेकिन जब इस दुनिया से जाना पड़ेगा तब कौन सा सामान आप साथ ले जाओगे? है कोई सामान ऐसा जो साथ जाए आपके? एक बड़ा अच्छा लगता है कभी मुझे, ट्रेन के अंदर जाते हैं तो दो चार बैग उठा लेते हैं क्योंकि उसमें वजन की परेशानी है, और फ्लाइट में जाना होता है तो 20 किलो से ज्यादा नहीं उठाना है, परेशानी होती है, बेकार सामान निकालना शुरू करते हैं। कोई स्ट्रिक्ट एयरलाइन है कि 20 किलो से एक ग्राम भी ऊपर नहीं उठाएगी तो हम बोला टूथपेस्ट वहां ले लेंगे, साबुन वहां ले लेंगे, निकाल कर सब सामान आते ऐसे कम करना शुरू करते हैं। अरे वो जो वेकुंठ वाली फ्लाइट है उसमें तो एक एक दुनिया का क्या, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा और क्या उठा के जाओगे, उसमें क्या साथ जाएगा उसको किसी को मालूम है उसका? और उसकी तैयारी कोई कर रहा है क्या? पहले जाना पड़ेगा इसका तो आपको विश्वास है कि नहीं कि यहां रहेंगे हमेशा? युधिष्ठिर महाराज से जब यक्ष ने प्रश्न पूछा था, बहुत से प्रश्न में एक प्रश्न ये पूछा था कि सबसे आश्चर्य इस दुनिया में बड़ा आश्चर्य क्या है, सरप्राइज क्या है दुनिया की सबसे बड़ी, युधिष्ठिर महाराज ने कहा था अरण्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषा स्थावर इच्छन्ति किम् आश्चर्यम् अतः परम्। रोज कोई ना कोई इस दुनिया से रवाना हो रहा है, आज इस घर में, कल उस पड़ोस में, कल उस देश में, कल उस गांव में, रोज कोई ना कोई इस दुनिया से जा रहा है। सब लोग जो साथ होते हैं वो कहते हैं ये जा रहा है, लेकिन हमारी बारी कभी नहीं आती, शेषा स्थावर चलती, जो बचे हुए वो समझते हैं कि हमारी बारी कभी आएगी नहीं। सबका ओके रिटर्न टिकट जेब में पड़ा है, लेकिन डर के मार के दिखा निकाल के देखते नहीं कौन सी तारीख है, बहुत डर लगता है इस टिकट को देखने, ओके है रिटर्न टिकट सबकी जेब में पड़ा है, लेकिन इतना डर लगता है उसको निकालने के देखने के लिए। संत बड़े काम को जगत में आते हैं, मिटा के खोफ मरने का अमर जीवन बनाते हैं। ये भगवत गीता और भागवत कब दी गई? जब मौत सामने आंखों के खड़ा था, युद्ध भूमि के अंदर अस्त्र शस्त्र उठा के सब 11 अक्षौणी एक और 7 अक्षौणी दूसरी सेनाएं एक दूसरे को मारने के लिए खड़ी थी, उस मारने के बीच में मरने से मुक्त करने के लिए कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को बताई, और परीक्षित महाराज 7 दिन के बाद निश्चित रूप से तक्षक सर्प के द्वारा प्राण त्यागने वाले थे, तब भागवत बताई गई थी कि मृत्यु का भय मुक्त, वो मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए ये हमारे शास्त्र अवतरित हुए हैं कि मृत्यु के भय से मुक्त कैसे हुआ जाए, ये शिक्षा कहां मिलती है? क्या साथ ले जाएंगे उस वक्त उसकी तैयारी करो, जिस मार्ग के गिने जाए न कोसा। गुरबाणी में एक बहुत सुंदर ये शब्द है, जब यहां से जाएंगे तब कितने किलोमीटर है कितने मील है उसका कुछ पता नहीं, गिने जाए न कोसा, गिनती नहीं हो सकती है उसके कितने किलोमीटर है, वहां क्या साथ जाएगा? हरि नाम वहां संग तोषा, केवल भगवान का नाम वहां हमारा पोषण करने के लिए हमारा साथ जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। तो क्या हम कथा कर रहे हैं क्या? बैंक में जैसे महीने महीने कुछ डालते हैं कि हमारा अकाउंट बढ़ता जाए, ऐसे क्या हम हरि नाम अकाउंट में रोज कथा करके डाल रहे हैं क्या? भगवान का नाम नित्य स्मरण कर रहे हैं क्या? भैया ऐसे शाम को दुकान पे नोट गिनती है, कैसा अच्छा लगता है? एक दिनार, दो दिनार, दस, बीस, इक्कीस, जितना दिनार ज्यादा आता है उतना दिन बड़ा होता जाता है। जितना पैसे गिनने से सुख मिलता है साधु को, उतना भगवान के नाम को गिन के लेने से आनंद। ये धन कच्चा, ये जो रुपये वाला धन है ये कच्चा धन है, इसको चोर चुरा सकता है, आग जला सकती है, पानी भिगा सकता है, लेकिन वो जो धन है वो पक्का है, वो कभी खराब होने वाला नहीं। इस दुनिया में नहीं, आजकल लोग डरते हैं, ज्यादा पैसा साथ नहीं उठाते, क्या उठाते हैं? कार्ड, एटीएम, है ना? आपने पैसे डाले होंगे तब निकलेंगे एटीएम से, जैसे निकलेंगे हा? कोई कार्ड ले जाएंगे एटीएम में डाले तो निकलेंगे क्या पैसा? आपने डाले होंगे तब निकलेंगे ना, तो भगवान का नाम लिया होगा तब पैसे आपके काम निकलेगा ना। हमारे पास भी हमारा एटीएम कार्ड है, ये जब जो हम करते हैं ये हमारा एटीएम कार्ड है, कहीं भी किसी भी कंट्री में ये हम ऐसे जहां जिसको ऐसे शुरू करते हैं वहां हमारा रिटर्न एकदम निकल गया है, कुछ करना नहीं पड़ता है, सब व्यवस्था अपने आप हो जाती है। और ये एटीएम इनके स्वर्ग में भी होता है, उधर भी इसकी बैंक है, वैकुंठ में भी इसकी बैंक है। और ये एटीएम जब कोई चीज साथ नहीं जाएगा तब ये आपको जहां भी गए वहां आपके काम आएगा, इसलिए ये बहुत अच्छा फ्री में आपको, कभी कभी बैंक कहती है ना इस वक्त आप फ्री में एटीएम ले रहे, लेकिन फ्री में हम दे रहे हैं लेकिन पैसा आपको जमा करना पड़ेगा तब निकाल सकोगे। ये पूरी ये साइंस है, इसलिए कहते हैं प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस इज साइंस, ये विज्ञान है। जैसे बैंक में पैसा डाल के निकाल सकते हो कार्ड से, ऐसे भगवान का नाम जो आप जप करोगे ये जहां भी मुश्किल से मुश्किल आपके लिए समा आ गया। भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, स्वाल्पमस्य धर्मस्य त्रायते मातो भयात। अल्पम का मतलब थोड़ा सा, एक बार भी ऐसे अचानक बैठ के ऐसे भगवान की कथा सुनी होगी तो जब बड़े से बड़ा कष्ट अचानक कहीं आ गया तब ये आपका समय के ऊपर मुख से कहा हुआ भगवान का नाम आपकी सुरक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेगा, ये कवच बन के उस वक्त आपको दुर्घटना से बचाने। थोड़ा सा भी एक बार कभी भगवान का नाम, अजामिल ने अपने बेटे को नारायण करके बुलाया था, स्वल्पमस्य धर्मस्य, अल्प से अल्प काम नारायण बेटे का उच्चारण किया था लेकिन मृत्यु के भय से मुक्त हो गया थोड़ी देर के लिए। उसको मृत्यु जो उसके गले के ऊपर ऐसे फंदा फांसी का चढ़ चुका था, विष्णुदूत ने उसने उसको छुड़ा दिया। थोड़ा सा एक बार भी भगवान का नाम कभी गलती से जपा हुआ बहुत बड़े दुख और संकट से हमारे को मुक्त करेगा, इसलिए तैयारी करना चाहिए। बुद्धिमान वो माता है जो बच्ची की जन्म से ही तैयारी शुरू करती है विदाई की, बुद्धिमान इंसान वो है जो जब से समझ आई है तब से प्रतिदिन भगवान के नाम का स्मरण करके कुछ न कुछ अपना ये सच्चा धन इकट्ठा करता है। नित्य नेम से भगवत गीता में एक बहुत सुंदर आदेश कृष्ण ने दिया है, तीसरे अध्याय में, सह प्रजा यज्ञ सृष्टवा प्रजापति। जब भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति की तो उसके साथ यज्ञ को उत्पन्न किया और फिर आदेश दिया ईश्वाष्ट काम दुख, आप यज्ञ करो, ये काम दुख, ये काम धेनु गाय है, आप यज्ञ करोगे तो आपकी सारी इच्छाएं ये यज्ञ पूरी करेगा। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ के 12 प्रकार बता दिए, ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ, लेकिन 10वें अध्याय में भगवान ने एक विलक्षण यज्ञ बताया, बड़ा अद्भुत यज्ञ बताया है, ऐसा यज्ञ जिसमें न ब्राह्मण की जरूरत है मंत्रोच्चारण करने की, मंत्रोच्चारण करने के लिए न घी की जरूरत है, न आग की जरूरत है, न सामग्री की जरूरत है, न धुआं होगा, और ये यज्ञ सब कर सकते हैं। और कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, सारे यज्ञों में मैं मेरी विभूति जप नाम का यज्ञ है। इस यज्ञ करने के लिए केवल जीभा को उच्चारण करना है, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्णा
दिन करोगे तो ये कामधेनु है, ये यज्ञ सब इच्छा पूर्ति करने वाला है, ये यज्ञ निश्चित रूप से नित्य हर एक व्यक्ति को करने का नियम बनाना चाहिए। क्या जपना चाहिए ये प्रश्न उठता है, जप करना चाहिए ये तो हम मान लेते हैं, ये यज्ञ हम करेंगे इससे हमारा सब काम कल्याणकारी होगा, मंगलमय होगा, लेकिन किसका जप करना चाहिए? तब वापस जिसने सृष्टि की रचना की उसके पास चलते, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा जी से जाके नारद ने पूछा कि कलयुग आ गया है, लोग बहुत दुखी है, बताइए कोई साधन इनका उद्धार कैसे होगा। कली संतर ने उपनिषद में ब्रह्मा जी के पास नारद किया है और पूछता है बताओ बाबा कलयुग के दुखी लोगों का उद्धार कैसे होगा। ब्रह्मा जी बड़ा प्रसन्न हो गया कि बेटा तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है, दूसरे के भले की बात करते हो, लोग तो अपने भले के लिए आते हैं, तुम दूसरों का भला चाहते हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम्हें बताता हूं कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी के चारों मुख से चार वेदों का जिनसे उच्चारण होता है और तीन बार सारे वेदों को पढ़ाया ब्रह्मा जी ने, और अध्ययन करने के बाद ब्रह्मा जी अनुभव करके अपना बता रहे हैं,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
इति षोडशकम नाम नामो कली कलमश नाशनम, इति का मतलब ये, षोडशकम का मतलब दस और छह सोलह, नाम नाम भगवान के नाम, कली कलमश कलयुग के सारे पाप ताप संताप नाशनम नाश करने वाले हैं। मैं सब वेदों को तीन बार पढ़ा है, तीन बार पढ़ने का मतलब अच्छी तरह से ठीक तरह से पढ़ा है मैंने, और मेरे को यही एक सार मिला है कि इन सोलह अक्षरों के नाम के द्वारा कलयुग के सारी बाधाओं को, सारे ताप संताप को, कष्ट को निवारण किया जा सकता है। तब नारद जी ने कहा बाबा इतना बड़ा लाभ है केवल इस नाम के उच्चारण से, तो इसकी उच्चारण का अधिकारी कौन है, विधि क्या है, कब जब करना चाहिए, कौन कर सकता है? ब्रह्मा जी कहता है सब मंत्रों के जप का नियम होता है, लेकिन मैं इससे विशेष रूप से कलयुग में कहता हूं इस जप के जपने के लिए न कोई अनाधिकारी सब जप सकते हैं, बच्चा मां बेटी भाई बहन बूढ़ा इस देश का उस काल का सब समय सब काल सब लोग जप सकते हैं, पवित्र हो अपवित्र हो कैसी भी स्थिति में उसको जप सकता है, कोई अनाधिकारी नहीं है, कोई विशेष निर्धारित समय नहीं है। जैसे गायत्री मंत्र जपने का केवल संध्या का समय है, संध्या के समय के बाद कभी भी जपा जाएगा तो उसका फल नहीं होगा, प्रतिवाय लगेगा, उसका उल्टा असर होगा। केवल संध्या का बहुत पवित्र स्नान करके शौच आदि करके ध्यान करके ऋषि का छंद का फिर एकाएक आसन के ऊपर बैठकर तब जप करना चाहिए, तब उसका लाभ होता है संध्या में। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र उठते बैठते बस में जाते गाड़ी में जाते सीढ़ी पे चढ़ते कहीं भी जाओ तो जप कर सकते हो और इसका फल ही मिलेगा, इसका विपरीत फल होता ही नहीं है, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को। महाराज परीक्षित बारहवें स्कंध श्रीमद् भागवत में कलयुग का बहुत भयानक वर्णन सुनते, कलयुग में लोग बहुत दुखी हो जाएंगे, तब परीक्षित महाराज कहते मैं राजा हूं, मेरा अंतिम दिन है आज, आज मैं संसार से जाने वाला हूं। महाराज बताइए केन उपाय न कली युगे जना, ये कलयुग के लोगों का कौन सा उपाय है कि दुख और तकलीफ से कोई भी प्रजा के सुख की चिंता करता है तब उसको महान राजा कहते हैं परीक्षित। और सुखदेव कहते कि सुखदेव महाराज के मुख से निकला कलेर दोषे निधे राजन, निधे का मतलब समुद्र। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कलयुग दुखों का सागर है। परीक्षित महाराज बहुत दुखी हो गए, चेहरे पे सागर है, समुद्र को कोई पार कर सकता है? कहते हैं कि कितना भी अच्छा तैरने वाले हो, कितना भी बड़ा स्विमर हो, वर्ल्ड चैंपियन हो, क्या समुद्र को पार कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है ना? तो कल जो समुद्र है दुखों का, कलेर दोषे निधे राजन, कलयुग दोषों का सागर है तो लोगों का उद्धार कैसे होगा? परीक्षित का चेहरा मुरझा गया। बोला मैं जा तो रहा हूं लेकिन अपनी जनता का भला नहीं कर सकता, इतने सागर मेरी जनता कैसे उद्धार होगा इसका? महाराज सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित के चेहरे को मुरझाया हुआ देखा तो एक और लाइन कई श्लोक की, अस्ति एको महागुण, इतने बड़े दोष है, समुद्र है दोषों का, एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में। परीक्षित तो बोला जल्दी बताओ महाराज, जल्दी बताओ, मेरे पास समय नहीं है, मैं राजा हूं, आप रास्ता बताओ, मैं अनुकरण करूंगा, मैं इसका पालन करूंगा। तो पूरी प्रजा पालन करेगी, मैंने श्री कृष्ण की शिक्षा को सुना है, यदि यद आचरती श्रेष्ठ तत्तदेव त्रोजन, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं साधारण व्यक्ति उसका अनुकरण करते हैं। राजा अगर कोई चीज मानेगा तो प्रजा अपने आप उसको करने लगते हैं। तो मैं राजा हूं, अंत समय में आप कहो क्या करना है, मैं करूंगा। तो सब लोग कहेंगे परीक्षित ने ये उच्चारण किया उसका उद्धार हो गया, तो पूरी दुनिया अपना उद्धार कर ले। तब सुखदेव मुस्कुराते हुए परीक्षित को कहते अस्ति एको महागुण, क्या है बाबा जल्दी बताओ महाराज। सुखदेव के मुख से निकला कीर्तन्य कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। सरस्वती बैठी सुखदेव महाराज की जीभा के ऊपर और ये मुख से उच्चारण हुआ कीर्तन कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन मुक्त संग दुनिया के सारे बंधन से मुक्त करेगा। परम ब्रजेत, परम धाम भगवान के ब्रज धाम, ब्रज गोलोक वृंदावन तक ले जाएगा, वहां ले जाएगा जहां भगवान रहता है और सीधा जाके भगवान से हाथ मिला सकते हैं। ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की तो भगवान विष्णु मिले साक्षात और शेख हेड किया है, ऐसे लिखा है भागवत में कि हाथ मिलाया जाके, हाथ मिलाया ऐसे लिखा है भगवान से जाकर। तो ये ब्रह्मा, ये सुखदेव गोस्वामी की वाणी है और अंतिम श्लोक भागवत का ये है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सब मिलकर अगर भगवान का नाम गाएंगे, कौन सा नाम गाएंगे? जो सुखदेव कहता है कीर्तन कृष्णस्य, कोई विशेषण नहीं लगाया, केवल डायरेक्ट का कृष्ण का कीर्तन, कीर्तन कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत, सब बंधनों से मुक्त करके परम पद की प्राप्ति कराएगा। अब परीक्षित महाराज कहता है ठीक है महाराज, मैं अभी जपन जप करता हूं। और उस वक्त अकेला परीक्षित नहीं था सुखदेव के सामने, सुखदेव का पिताजी व्यासदेव था और व्यासदेव जी का गुरु नारद मुनि बैठा हुआ था, अगस्त ऋषि था, अत्रि था, धौम्य था, वशिष्ठ था, विश्वामित्र था, जितने ब्रह्मांड के ऋषि है सारे ऋषि बैठे हुए थे। उन सब ऋषियों ने कहा इतना सरल मार्ग, इतना आसान मार्ग, इतने मुश्किल रास्ते के ऊपर बहुत धन्य सुखदेव महाराज, बड़ा कल्याण किया आपने कलयुग के लोगों का, सब संतों ने इसका समर्थन किया। और परीक्षित महाराज कृष्ण कथा सुन के कृष्ण के नाम के उच्चारण करते हुए इस संसार से इस भगवत धाम को प्रस्थान किया, ये तैयारी उनकी हुई। और हमसे इसको शिक्षा ये ग्रहण करनी है कि अभी हम भी अपनी तैयारी पहले से कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो आज से शुरू करें। और इस भगवान के नाम को जो ब्रह्मा ने निर्देशित किया है, जो हमारा पिता है, ब्रह्मा सबकी उत्पत्ति करने वाला परम पिता है, पिता का आदेश मानना हर बच्चे का धर्म है, हम आज्ञाकारी बच्चे बन के जो ब्रह्मा जी ने आदेश किया है 16 अक्षर के मंत्र के मंत्र के उच्चारण करने का, जो महाराज परीक्षित इस पूरी पृथ्वी का एक छत्र राजा था जिसने इस मंत्र के सुनकर उच्चारण करके अपनी प्रजा का और अपना हित किया और इसी मंत्र को स्वयं साक्षात श्री कृष्ण महाप्रभु चैतन्य के रूप में जब पधारे और श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रयागराज में रुक रह रहे थे तब श्रीपाद महाप्रभु वल्लभाचार्य वहां घर था उनके घर में भोजन के लिए बुलाया था। जमुना पार करके बड़े आनंद से कीर्तन करके जा रहे थे और जमुना जी के रंग को देखा कि नीला रंग है जमुना जी का और महाप्रभु को उस नीले रंग में कृष्ण दिखाई दिया और इतना मगन होकर कीर्तन किया कि नाव हिल रही थी, बाकी बैठे हुए नाव में कहते थे कि नाव के अंदर पानी आ जाएगा, लेकिन वो चेतन महाप्रभु विशेष रूप से श्रीपाद महाप्रभु वल्लभाचार्य के घर के ऊपर अड़ियल ग्राम है, मेरे ख्याल ग्राम का नाम मैं गए उस स्थान को देख के आए तो वहां गए थे। चेतन महाप्रभु जी प्रसाद दिया था साथ में तो संकीर्तन जब स्वयं चेतन महाप्रभु आया तो पूरे भारतवर्ष में प्यादल घूम के भगवान के नाम का कीर्तन करके ढंडोरा पीटा कि आइए आइए ये भगवान का नाम लीजिए और अपना जन्म सफल कीजिए। तो न वेद पढ़ने से, न तप करने से, न यज्ञ करने से, न दान देने से भगवत प्राप्ति का साधन हो सकता है तो केवल हो सकता है भगवान के नाम जप करने से। तो हमको कैसे भी भगवान के नाम जपने का जीवन में संकल्प लेना चाहिए और ये तैयारी प्रतिदिन करने का नियम बना देना चाहिए तो ब्रह्मा जी के आदेश का पालन होगा, सुखदेव के निर्देश और परीक्षित की गति के द्वारा हमारी भी सदगति होगी और हम देखेंगे इस जीवन में हम देखेंगे हमारे दुख खत्म हो जाएंगे का अर्थ ये नहीं कि दुख आएंगे नहीं, लेकिन दुख आएंगे लेकिन आप दुखों से ऊपर खड़े होंगे, कहोगे आए हो तो चले जाओ मेरे पास तुम्हारी जरूरत नहीं। आपका इतना आत्मबल बढ़ जाएगा, इतना भगवान का आप अपने अंदर शक्ति महसूस करोगे कि दुनिया के दुख और तकलीफ और संकट आपको विचलित नहीं कर पाएगा, आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, आप इम्यूनाइज हो जाओगे तकलीफ और संकट से, बहुत आनंद में रहोगे। हर समय प्रयोग करके देख लो, एक हफ्ता एक महीना भगवान के इस नाम को जप कर देख लो, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और अच्छा परिवर्तन आए तो जपते रहना, किसी को कोई हानि वो नहीं होने वाली नहीं है, हो जाए तो हम लिख के देते हैं जो हानि होगी हम भरेंगे, तो आज तक किसी का हानि हुआ नहीं है और लाखों लोगों के ऊपर हमने ये प्रयोग किया है, विश्व में एक्सपेरिमेंट किया है। जिन्होंने इस नाम को जपना शुरू किया, एक हमारे गोविंद दास जी डॉक्टर है, उसने प्रयोग किया कि हरे कृष्ण मंत्र जपना और कोई भी नाम जपना दोनों का प्रभाव मानव के ऊपर क्या पड़ता है। उसने पीएचडी की डिग्री ली कि हरे कृष्ण मंत्र जपने वाले लोग मानसिक तनाव और स्ट्रेस से बहुत मुक्त हो गए और साधारण नाम जपने वाले के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कुछ लोगों को कहा आधा घंटा रोज कोको कोला जपो और कुछ लोगों को कहा कि हरे कृष्ण मंत्र जपो और फिर उनके चरित्र में सतो रजो और तमोगुण के आधार पे हर एक के चरित्र को लिखते गए और कुछ समय के बाद दोनों का जब रिजल्ट निकाला तो स्टेटिकली ये रिजल्ट निकला कि जो हरे कृष्ण मंत्र जपते थे वो बुराइयों से बच गए, उनका मानसिक तनाव कम हो गया, उनका चरित्र बहुत सुंदर हो गया। तो पीएचडी केवल इस मंत्र के जपने के प्रभाव के ऊपर अमेरिका में एक व्यक्ति ने की है, तो निश्चित रूप से लाभ होगा, लेकिन ये काम शुरू करने में देर नहीं करनी चाहिए। ये तो रावण भी कह के गया था, रामचंद्र ने लक्ष्मण को भेजा कि आज समय रावण बड़ा विद्वान है कुछ पूछ के आओ और तब रावण के पास जब लक्ष्मण गया तो रावण ने कहा अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने वाला था लेकिन मैंने देरी कर दी तो मैं जा रहा हूं काम अधूरा रह गया, अच्छे काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए और बुरे काम को जितना टाल सको उतना टालो। तो आइए आज के सत्संग की समाप्ति से पहले हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं इस जप का, आप सब 5 मिनट सिर्फ हमारे साथ जप कीजिए। बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ये लाइसेंस है भगवान का नाम लेने के लिए, जैसे 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 बंदूक खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती, नहीं तो आप उठा के नहीं घूम सकते हो। ये संकीर्तन आंदोलन महाप्रभु का है, उसका लाइसेंस है। अब हम सब साथ जप करेंगे, मेरे साथ बोलते जाइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 ब्रश करने में, टूथ ब्रश करने में 7 मिनट लगते हैं, उतना ही टाइम लगता है इस भगवान के नाम जपने में। अगर इतना हम सुबह सवेरे जपने का नियम बनाने, रास्ते में जाते हुए, काम पे जाते हुए, बस में, कहीं भी, तो आप देखिए आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप भगवान के निकट अपने आप को पाओगे, हर मुश्किल में भगवान का हाथ आपकी सहायता करता हुआ दिखाई देगा, और हजारों और भक्तों का संग आपको प्राप्त होगा जो परदेश में आपके लिए अपने भाइयों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारे यहाँ कुछ भक्त बैठे हुए हैं जो नित्य नियम से जप करते हैं, किसी की रुचि है, कोई सीखना चाहता है तो ये बताएंगे अरविंदाक्ष और हमारे जो सुचि सर्व कृष्ण प्रभु, और यहाँ सत्संग करते हैं हर फ्राइडे को पीछे सर्व क्या सहिष्णु कृष्ण दास, तो ये आपके सामने यहाँ बैठे हैं। कोई ये काम शुरू करना चाहिए तो हम तो निःशुल्क सेवा भगवान के नाम जपने के लिए सारी व्यवस्था का प्रबंध करते हैं, और यहाँ भी आते रहते हैं हर फ्राइडे को, और साथ में और भी जहाँ भक्त रहते हैं वहां सत्संग करते हैं। आप इसका लाभ लीजिए, प्रदेश में धन कमाने आए हैं तो ये नाम धन भी इतना इकट्ठा करके लाई जाइए कि आपके साथ पीढ़ियों का उद्धार हो जाए। ये धन 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है, इस धन को निश्चित रूप से इकट्ठा कीजिए, ये लाभ ले लीजिए, और साथ में नहीं तो भी 400-500 से अधिक अच्छे साथी और मित्र और भाइयों के समाज में अपने आप को महसूस कीजिए कि आप अकेले नहीं हो प्रदेश में। ये बहुत बड़ा अनुभव हमने किया है भक्तों के संग में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग कुछ लेते जब मिल लेते, किसी को कोई इच्छा है तो आपसे मिल सकता है, अनाउंसमेंट कर लीजिए, आप लोग देख लें।